आज के दौर में जो दावत देते हुए या दावा का जो अंदाज है ना, इसमें थोड़ा सा फर्क आ चुका है पहले से। पहले कुछ और चीज़ें थी। तो हमारा हमेशा ये माइंड होना चाहिए कि जो चीज़ें अल्लाह ने वक्त के साथ साथ हम मुसलमानों की रेंज में रखी हैं, गैजेट, स्किल्स, कंप्यूटर और इसी तरह की जो दूसरी चीज़ें, उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, अब हम चंद चीज़ें देखेंगे कि उदु इला सबीली रब्बी का बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसना व जादिल हम बिल्लती याहसन इन रब्बक वालम बि मन दल्लन सबीली ही वहु आलम बिल मुहतदीन। इसको नबी सल्लम ने कैसे समझा था? जैसे अभी मैंने हिंट दिया था पिछले सेशन में कि हम नबी सल्लम का तरीका तबलीग अपने लिए एक रोल मॉडल के तौर पर लेते हैं। कुछ रेफरेंस जल्दी से आप नोट करेंगे कुछ चीज़ें, लेकिन ये सारा कुछ आपको मुझे इस चीज़ के लिए कायल करेगा कि दावत देने के लिए किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है। कौन कैसी दावत देता है? लकत कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। अल्लाह ने हम सबको एक बेहतरीन उस्ताद दिया है, जो मेरे भी उस्ताद हैं, आपके भी उस्ताद हैं, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको नबी सल्लम के तरीक़े तालीम से, तरीक़े तरबियत से, तरीक़े दावत से नहीं मिला, उसको फिर किसी से भी नहीं मिलेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तबलीग में से कुछ चीज़ें अपने लिए नोट करेंगे। नोट्स लीजिए, नोट्स लेना, कोई चीज़ इसका अल्टरनेट नहीं हो सकती। 10 चीज़ें आपके पास हों और उसके मुकाबले में 11वीं चीज़ आपके अपने हाथ की लिखी हो, तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है तबलीगे दीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करने की अहमियत। ठीक है, याद रखिए कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। आपको अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नमूना बनाया। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है जो अल्लाह से मिलने और क़्यामत के आने की उम्मीद करता हो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करे। सूरत अल अहज़ाब में आयत 21 में ये बात आपको मुझे यकीन दिला दिया, किसी को ना देखो। सवाल पैदा होता है, क्या नबी सल्लम दावते दीन के नाम पर भी हमारे लिए एक नमूना है? दिस इज़ अ क्वेश्चन। कि आपने दीन को कैसे नाफिज किया? तो सूरत माईदा आयत 67 नोट कीजिएगा, या युहर रसूल उबल्लिग, ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ। यानी जिस तरह आज आपको मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, यही जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी गई थी। बल्लिग फ़र्ज़ है, अमर है। यस, यू नीड टू कन्वे द मैसेज जो आपको आपके रब की तरफ से मिला। वइल्लम तफल, और अगर आपने ये ना किया तो फमा बल्लगत रिसालतहु, फिर आपने उस रिसालत का हक अदा नहीं किया। कितनी सख्ती है इसमें, डायरेक्ट हुक्म है कि आपने अगर ये काम ना किया तो याद रखिए फिर क़यामत के दिन पूछा जाएगा, आप पर नज़र अपने ऊपर लें, क्या हमें भी ये हुक्म दिया गया है? बिल्कुल ये हुक्म दिया गया है। और मैं माजरत के साथ कहूँगी कि आज हमारे बहुत सारे मुसलमानों को ये पता भी नहीं कि हमें भी वही हुक्म दिया गया जो कि अम्बिया कराम और ख़ास तौर पे नबी सल्लम को दिया गया। और याद रखिए, नबी सल्लम को उम्मत के लिए एक नेमत करार दिया गया। नोट कीजिए सूरत आले इमरान 164 164, लकत मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन। यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एक एहसान फरमाया कि एक रसूल इन्हीं में से भेजा। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, बेशुमार, किसी का एहसान नहीं जतलाया सिवाय एक नेमत के, और वो है नबी सल्लम। क्या हम नबी सल्लम को एक नेमत समझते हैं? क्यों थे अल्लाह के नबी नेमत? क्वेश्चन। तो जवाब, यतलु अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं, व युज़क्कीहिम, इनका तस्किया करते हैं, प्योरीफाई करते हैं अपनी उम्मत को, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब और हिकमत सिखाते हैं। तो क्या पता चला कि नबी सल्लम ने ये सब सिखाया, ये किया, तो आप नेमत है। तो आज भी अगर कोई हमें ये सिखाए और सिखाने में मददगार बने, तो वो हमारे ऊपर अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। हमें इस एहसान को महसूस करना चाहिए और इसकी शुक्रगुजारी अल्लाह के कुर्ब के ज़रिए में हमारी ज़िंदगी में नज़र आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, दुनियावी तौर पे आप उम्मीद थे, स्कूल, कॉलेज या मदरसा, और जिसको आज हम बड़े प्यार से यूनी कहते हैं, पहले लोग उसको यूनिवर्सिटी कहते थे, आज हम यूनी कहते हैं, प्यारा लगता है, ऐसे लगता है जैसे किसी प्यार से बुला रहे हैं। इसी तरह की किसी जगह में अल्लाह के नबी को जाने का मौका नहीं मिला। तो एक जुमला लिखिए फिर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे दाई दीन बनने के लिए कि इन सब में से किसी जगह से हो गुजरे हो। आज फेम है, आज मशहूरियत है, हम कहते हैं फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो बहुत काबिल हो जाएंगे। जॉब मिल सकती है आपको उस नाम पे, इज्जत मिल सकती है, आप अपनी गाड़ी के पीछे उस यूनिवर्सिटी का टैग लगा ले, आप लोगों को बताएं मैं फलां जगह से पढ़ी हूँ, आप लगा लीजिए, बट कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर भी आप एक अच्छे दाई दीन बने। इट्स इम्पॉसिबल समटाइम। तो इसको नबी सल्लम की ज़ात पर देखिए, तो फिर सवाल पैदा होता है कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम। तो कुम फानजिर व रब्बक फकब्बिर, अल्लाह ने डायरेक्ट हुक्म दिया सूरत मुद्दस्सिर आयत 2, 2 और 3 में, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए और लोगों को हिदायत कीजिए और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। ये पहला हुक्म था जिसमें अल्लाह के नबी को हुक्म दिया। देखिए पहली वही को देखिए, इकरा बिस्मि रब्बी का, यू शुड गेट नॉलेज फर्स्ट। सबसे पहला काम जो दावत और तबलीग में, जिसको आप बाज़ाब्ता दावत तबलीग कहते हैं, खुद सीखना होता है। क्या सीखना है? जो कहने लगे हैं, जो बताने लगे हैं, और कैसे बताना है, कहाँ बताना है, कहाँ नहीं बताना, ये भी सीखने की बातें हैं। हम बाज़ दफ़ा कुरान के लफ्ज़ों और अहादीस को हम समझते हैं कि ये है नॉलेज, एक एक लफ्ज़ हम नोट्स में लिख लेते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन नहीं पता होती, या वो वैसी नहीं होती, या जिन हालात में जाकर आपको वहाँ बात करनी पड़ेगी वहाँ तो वो बातें ही नहीं हो सकती। याद रखिए हिकमत का तकाजा क्या है, कि अपने ऑडियंस की रियायत कीजिए। आप जब अल्लाह की बात बताने जाएं तो पहले सर से पांव तक खुद को देखें, आर यू एक्सेप्टेबल, जिस माहौल, जिन जगहों में, जिन लोगों में जा रही हैं, क्या वो आपको कबूल भी कर लेंगे। याद रखिए सबसे पहले लोगों के अंदर से उनकी ज़ात का बुत तोड़ना होता है, बड़ाई का एहसास, अना खैरु मिन्हु, मैं। अब वो मैं के एहसास में पड़े हैं, आप 20 हदीसें लिख कर गई हैं, आपने 6 आयतों के हवाले लिखे हैं, ये बाद में होंगे, फिर वही लफ्जाजी हो दो। आप जब कहीं किसी को दावत देने जाएं, पहले इनवाइट करें, अगला आपको एक्सेप्ट करें, उसके लिए आपका हाल हुलिया, आपका तरीका चलने का, बात करने का, दाखिल होने का, ना तो आर्टिफिशियल हो कि आप एक डमी लगे, और ना इतना कैजुअल हो कि वो समझे ही ना कि आप हैं जो आप उनको दीन की कोई बात बताएंगी। बहुत नपतुला, डिसेंट, साफ सुथरा, ऐसा माहौल और ऐसा आपका हाल हुलिया होना चाहिए कि अगले आपको कुछ समझ लें। जैसे लोगों में जाएं वैसे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ आपका गेटअप और होगा, अनपढ़ है उनके साथ और होगा, कुछ कल्चर ऐसे हैं बड़े बेतकल्लुफ़ हैं, आप वहाँ जाएं बिल्कुल ऐसे मोटी चादर लपेट कर जाएं जैसे वो चादर को बुक्कल मारते हैं, वो कहेंगे अपनी ही है, और वहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से गाउन पहन कर, स्कार्फ लपेट कर, बहुत ज़रा अच्छे लेके में जाएंगी, उनको बार बार लगेगा ये कोई बाजी बार से आई है, ये भी नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द रूम। जैसे लोग शादी का दर्स है और आप वहाँ जाकर अपना अबाया नहीं उतारे, निकाब भी नहीं उतार रहे, और आप वहाँ कोने में छुपट के बैठे हैं, नहीं मैं मदरसे से आई हूँ, इतनी बाजियाँ मॉडर्न है, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मशहूर है, वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। आप उनको हज़रत आयशा की शादी का किस्सा सुना दें, हज़रत खदीजा की, फातिमा की, कोई नहीं सुनेगा, दिमाग बंद है, वो कहेंगे हमारी इनसे वेवलेंथ ही नहीं मिलती, ये तो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई। औरतों की महफिल में औरतों की तरह रहिए, बाहर है बाहर रहिए, यूनिवर्सिटी में वहां रहिए, मस्जिद में वहां रहिए, यू शुड बी अ पार्ट। बस एक सिंपल सी बात है, देखिए नुमाया बंदा दो तरह से होता है, एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होके और एक बिल्कुल ही उससे स्टैंडर्ड लो। हम जब सब एक जैसे होते हैं तो हम किसी को नोट नहीं करते, लेकिन उसमें कोई एक अनयूजुअल तरीके से आ जाए, कोई अब यहाँ आए और बहुत पैंट शर्ट में और स्लीवलेस में हो, बाल बिखरे हो, तो हम सब एकदम सोचेंगे कि ये कौन सिस्टर आ गई, होगा ना। तो ये चीज़ भी हिकमत के अंदर आती है, अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए आपको मुझे ये सिखा दिया कि आपने सबसे पहले कुम फानजिर का हुक्म जब आपको मिला, उससे पहले आप कई साल की रियासत कर चुके थे, गारे हिरा में जाते, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करते, फिर इकरा बिस्मि रब्बी का अल्लज़ी खलक, इंसानियत पे गौर, पूरी एम्ब्रियोलॉजी तो आपको मुझे पहली वही में पढ़ा दी, दुनिया का इल्म भी लीजिए। आपकी अगर उर्दू अच्छी नहीं है तो अच्छी उर्दू बोलने वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे, बिलीव मी। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं, या आपको इंग्लिश में कुछ लफ्ज़ों को ट्रांसलेट नहीं करना आता, तो वो लोग जिनको उर्दू बहुत मुश्किल लगती है और उर्दू में वो इजी फील करते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आज की बहुत सारी जनरेशन्स को ये एहसास से कमतरी ये कह लीजिए कि उनको उर्दू नहीं आती। आती है, माँ डांटती है समझ आती है, दर्स नहीं आता जी, आंटी की बात नहीं समझ आती, आंटी की 10 में से 1 समझ आती है ना, तो फिर भी चलो, ये भी खुन्नस है, बड़ाई का एहसास। वी इंग्लिश पीपल, हमें इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश वालों में इंग्लिश बोलिए, क्या बड़ा, इंग्लिश बोल के कोई बड़े नहीं हो जाते, उर्दू बोल के आप कोई छोटे नहीं हो जाते। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो बहुत अहम है आपके मेरे लिए, उर्दू इला सबील रब्बी का बिल हिकमा में नुक्ताए आगाज वान जीरो शीर तक अलक्रबीन, करीबी लोगों से शुरू कर, रिश्तेदारों से। आप देखिए सूरह शुरा की आयत 215 216 तरतीब में कहते हैं कि सेकंड लेवल पे आ जाती है हुक्म में, तबलीग के हुक्म में, जो दूसरा हुक्म अल्लाह के नबी को दिया था, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराएं और जो मोमिन है उनकी तबाह करें और इनके साथ तवाज़ो का रवैया अख्तियार करें। क्या पता चला? डोंट ओवर लुक योर फैमिलीज। क्यों? मैं इस पे छोटी सी बात करूंगी। देखिए हम दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका कनाडा में भी पहुंच जाए, वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद आवर ओन फैमिलीज, इज इट ट्रू और नॉट? आपको अपनी खाला की, फुफ्फो की, मामों की, चचा की बेटियों में बैठकर जो एक अपनाइयत और बेतकल्फी का एहसास होता है, वो दूसरों में नहीं होता। दिल चाहता है इंसान का कि मेरे करीबी भी ऐसे ही हों। आज के दिन का जो हमारा गोल है ना, वो हमारे रिश्तेदार हैं। आप मैं अकेले नहीं रह सकते, बाहर के 10 लोग और घर का एक बंदा ज्यादा भारी है। उसमें देखिए कॉमन थिंग्स बहुत सी होती हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि रिश्तेदार उसको कहते हैं जो कभी नहीं बिछड़ता, 10 साल बाद भी पाकिस्तान जाएंगे वो मिल ही जाएगा। इसके बरक्स आप जिस मुल्क में गए आपको वहाँ बहुत अच्छे साथी मिले, जिस शहर में गए मिले फिर भूल गए। दोस्तें बदलती रहती हैं, साथ बैठने लगे कुलीग्स चेंज होते रहते हैं, शादी की सूरत में इन ससुराली रिश्तेदार एड ऑन हो जाते हैं, बट हमारी खाला की बेटियां, फुफ्फो की बेटियां, मामू की बेटियां आज भी वही हैं जो कल थी, ऐसी है ना। तो इन पे काम करें, रोए तड़पें, प्यार करें, कोई लाड दिखाएं, और अपनों के ऊपर ना एक हल्की सी धौंस भी चलती है। लेकिन वही बात फिर याद रखिए, पहला तरीका है तबलीग, हकीमाना, दूसरा हाकिमाना, तीसरा, तो अगर हम पहले दिन मुहाजिराना, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, ये नहीं करना, ठीक है? नहीं छोड़ना, ना दोस्तों को छोड़ना ना रिश्तेदारों को छोड़ना, ठीक है? फिर आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह नाहल की आयत में जो हम सब पढ़ रहे हैं इस वक्त, इसमें जो स्टेप्स दिए ना, मुझे ऐसे लगता है ये एक सीढ़ी का पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा है। हर बंदे को बात करते हुए, यानी द फर्स्ट लेवल हिकमत है, हिकमत की जरूरत सबको है, वी ऑलवेज नीड हिकमा टू डू द दावा, ठीक है? वही बात, मौका देखिए, महल देखिए, वक्त देखिए, कब कहाँ किससे क्या बात करने लगे हैं, इस पे गौर कीजिए, अदरवाइज वो बात बेकार हो जाएगी। आपने एक उर्दू का मुहावरा सुना होगा, बे वक्त की रागनी, सुना होगा ना, ये ना कीजिए, बे वक्त के राग ना लापिए। दावत के दो बुनियादी किरदार हैं, जैसे हर ड्रामे के कुछ किरदार होते हैं ना, तो दावत के दो किरदार हैं, एक होता है दाई जो आप हैं इस वक्त इंशाल्लाह और मैं हूँ, और एक होता है मधु जिसको हम दावत देंगे। याद रखिए कि दावत की कामयाबी का ज्यादा इन्हिसार दाई की जात पर होता है। वजह, दावत का मजमून कितना पुरकशिश, आपके पास दलाइल बहुत सारे, लेकिन तरीका दावत ठीक नहीं। एक जुमला लिखिए, कायल भी करना है और माइल भी करना है, कायल करना है अकल को, माइल करना है दिल को। आपके सामने कोई खाना रखता है, कहता खाइए, आपका दिल ही नहीं माइल होता, होता ऐसा कभी? आपको स्ट्रेंज लगता है खाना कोई, वो कहता है खा लो बड़ा अच्छा, आप कहते नहीं मुझे नहीं पता ये क्या टेस्ट होगा, एक न्यू थिंग है, आई विल नॉट टेस्ट इट, ऐसा होता है ना। कभी एक खाना आता है आपको दूर से खुशबू आती है, ये पालक गोश्त था मसलन, दिल माइल हो गया ना, जब माइल हुआ तो फौरन आपने पकड़ा और मुंह में डाल लिया, चाहे पता चले नमक ज्यादा था या मिर्चें ज्यादा थी, ये काम है। सबसे पहला मरहला माइल करने का है। हम कायल करने के लिए हदीसों पे हदीसें कोट करते हैं, दलीलों पे दलील करते हैं, और मैं एक जुमला बोलूंगी बहुत शौर से जो मुझे अक्सर याद रहता है, ये भी जेम है आज का, अपने आप को नेक साबित करते करते दूसरे को गुनाहगार मत कीजिए। स्टॉप हेयर, आप बार बार अगले बंदे को झिझका रहे हैं, और वो पहले थोड़ा बोला, अब और बदतमीजी से बोलेगा, अब चीखेगा, अब शाउट करेगा, अब दरवाजा बंद करेगा। प्लीज स्टॉप हेयर। गाड़ी चलाते हैं ना, क्या जब आपकी गाड़ी सामने पिलर के साथ पूरी तरह लग जाती है और बम्पर टूट जाता है, लाइटें टूटती हैं, फिर रुकते हैं, क्या करते हैं? हैंड ब्रेक, अचानक ब्रेक, स्पीड डाउन। दाई इज आर ड्राइवर। जितने एक्सीडेंट्स हुए, जितने क्लूजन्स होंगे, उतने बम पड़ेंगे, डम पड़ेंगे, पेंट उखड़ेगा, गाड़ी की मरम्मत करनी पड़ेगी। अक्लमंद दाई इज हकीम, और हकीम कभी कोई ऐसी गोली या दवाई या जड़ी बूटी नहीं देता जो आपकी तबीयत से मैच ही नहीं करती, ये भी समझिएगा। सेम दवा होती है, एक को फायदा देती है, दूसरे को एलर्जिक। बाद में पता चला मिजाज का फर्क था, किसी का सुफराई मिजाज था, बलगम थी, किसी का गरम मिजाज था। जैसे देखिए ना, करेले गरम है, उसका मिजाज गरम है, शलजम का मिजाज ठंडा है। गरम मिजाज वाले शख्स को आप करेले पेश करेंगे तो और गरम होगा, और शलजम पेश करें पहले ही ठंडा, वो और ठंडा हो जाएगा। हजरत इब्राहिम ने मांगी थी, आप और मैं भी आज मांगेंगे। क्या मांगी थी अल्लाह से उन्होंने? हुक्मा। अल्लाह से हुक्म मांगिए, हिकमत के मानों में, और फिर उसके बाद वजल लिसान असद के फिल आखरी। आपके चार बच्चे हैं, घर में तीन और अफराद हैं, अल्लाह से कहिए, अल्लाह मुझे सुझा दे मेरे किस बच्चे को क्या जुबान समझ आनी है, इसका मिजाज कैसा है। एक प्यार मांगता है, एक गुस्सा मांगता है, एक डांट सुन के डर जाता है, दूसरा डांट सुन के अकड़ जाता है। एक गोली सबको नहीं देनी। अगर आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, आप अगले बंदे को खुद मौका दे रहे हैं कि वो आपके सामने बदतमीजी भी करे और रिजिस्ट भी करे। और आप नोट करके देखें, मैं आप सबको अगर एक ही जुमला लिख के दूं ना, और आप सबसे कौन डिलीवर करे, सेम टू सेम वर्ड्स, आप 100 के करीब लोग, आपको मैं कहूं कि आप ये जुमला लिखिए और आइए इधर स्टेज पर डिलीवर करें, सेम लव्स, सब कुछ, बट तासीर फर्क होगी। दिल में किसी की उतरती है, किसी की नहीं उतरती। कोई खड़ा होता है तो घड़ी देखनी शुरू हो जाते हैं आप, और कोई हो तो आप कहते हैं वक्त किधर गया। ये अल्लाह की तरफ से भी होता है, लेकिन आप इसके लिए मेहनत भी कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह मेरी बात दिल में उतर जाए। दिल में बात कब उतरती है, ये है अगला स्टेप, मौइज़तिल हसना, वाज, दिलों को नरम करने वाली बात। दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है। कल एक लफ्ज़ बोला था, आज उस पर जुमला बोल देती हूँ, मौइज़ा हो ही नहीं सकती जब तक दिल में तड़प ना हो। तड़पिए। अक्सर लोग कहते हैं फलां की जुबान बड़ी नरम है, गलत समझा आपने, उसका दिल बड़ा नरम है। सख्त दिल हो आपका, कठोर, सेल्फ प्रेस, अपने आप को पसंद कर रहे हैं, खुश, अपनी तकबर में भरे पड़े, हम ऐसे वैसे, जुबान से कभी मीठी बात नहीं निकलेगी, वो उल्टी आर्टिफिशियल लगेगी, सजेगी नहीं आपको। जुबान नरम करनी है तो दिल नरम कीजिए। और दिल कैसे नरम होता है? सबको अपने से नेक समझिए। दे ऑल आर बेटर देन मी, माई हस्बैंड इज बेटर देन मी, माई किड्स आर वेरी इनोसेंट, मेरी बेटी अंदर से बड़ी नरम है। बात समझ रहे? हमेशा अपने मधु, मधु आप समझ गए ना, जो आपका गेस्ट है, आप मधु को गेस्ट लिख ले चले। यू आर इन्वाइटी, यू आर होस्ट, एंड द सेकेंड पर्सन इज योर गेस्ट। आप अपने गेस्ट से कैसे डील करते हैं? लीजिए ना, खाइए ना, बैठिए ना, ठीक तो हैं, ये तो कीजिए। कभी देखा करें लोग कैसे बेचते हैं गेस्ट के आगे, सारा कुछ करके भी कहेंगे सर कोई जरूरत तो नहीं, कोई मसला तो नहीं हुआ, पिलो ठीक था, ये ठीक था। ये प्यार है। आप आज के बाद एक काम कीजिए, जिसके ऊपर भी आपने ये प्रैक्टिस करनी है दाई बनने की, आप उसको अपना गेस्ट बनाएं। फील देम। मतलब जिस वक्त आपकी बेटी को आप कोई बात कहने लगे ना, इट्स नॉट योर बेटी, इट्स नॉट योर बेटा, इट्स योर गेस्ट। तो गैस तो जैसा भी है उसकी तो फिर इज्जत तो करनी है ना, इस्लाम का हुक्म है। आप देखेंगे आपकी टोन बदल जाएगी, और याद रखिएगा कि दिल में बात उतारने से पहले दिल से निकालनी पड़ती है। आपका कोई कमाल नहीं है अगर आप सोने जैसी बातें करके आए पर अगले के अंदर एक कतरा नहीं गया। क्या मिला? देखिए ना, प्लास्टिक डिस्टेम्पर है, प्लास्टिक शीट है, पानी का ग्लास उसके ऊपर फेंकें, टेबल है इस पे प्लास्टिक डाले, पूरे पानी का ग्लास रखें, एंड पे सारा कोने से इकट्ठा करके पौना को ग्लास इकट्ठा कर लेंगे आप, क्योंकि उस प्लास्टिक की शीट ने कुछ जज्ब भी नहीं किया। इसके बरक्स आप इस पे स्पंज रखें या ये वेलवेट रखें या प्लास्टिक रखें, आप एक नहीं मेरे हले 4 ग्लास भी इस टेबल पर डालते जाए ना, तो वो ये जज्ब करेगा। आप लोगों के दिलों के ऊपर जो प्लास्टिक है, जो विनीर है, पहले उसको उतारिए। ये भी एक हिकमत होती है। हर बंदे का कोई एक ताला होता है जिसकी चाबी होती है। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन यू, आई डोंट वॉन्ट, आई नो एवरी थिंग, जैसे लोग कहते हैं ना ऐसी बातें, फौरन समझ जाया करें, बस इससे आगे नहीं मुझे बोलना। तो एक मुबल्लिग की कामयाबी किस बात में है कि दोस्त दुश्मन सब पुकार उठे कि बल्लगतवाद दईता, क्या आपने इबलाग का हक पहुंचा दिया, आपने जो मौजू शुरू किया था ना आज पूरा समझ आ गया, आपकी बात सुन के अब कोई क्वेश्चन बाकी रहा ही नहीं, बस अब दुआ करें अल्लाह मुझे मानने की तौफीक दे दे। और फिर एक और बात याद रखिए, हिकमत के ही लफ्ज़ को ही ज़्यादा एक्सप्लेन करना है आपसे, बाकियों पे तो मैं चाहती नहीं कि जाएं अभी। मौइज़तुल हसन अभी ठीक है, जा दिलो बिल्लाती देखेंगे, एंड पे बात करेंगे कोर्स के। आपका मेरा काम अभी सिर्फ वो दुला सबीली रब्बी का बिल हिकमा है, अभी हमें हिकमत नहीं आई, बिलीव में नहीं आई। शादी हॉल में राउंड टेबल, दोस्तों के झुरझमट में, और माशाल्लाह आप एक सबीलुल जन्ना होल्डर पहुंच गई कोर्स किए हुए। अल्लाह की बना जो आपकी दोस्तों पे बिजलियां गिरनी, उनके तूफान टूटने, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। एक शादी थी, पता नहीं कहाँ थी, हमारे ही अपने माशाल्लाह बरखुरदरान या बरखुरदूरात क्या होती हैं, ये सारी बैठी थी एक टेबल पे, मैं भी दूसरे पे साइड पे थी, तो वो बेचारी कोई नॉन सबीलुल जन्ना आके वहां बैठ गई, समझ रहे हैं ना मेरी टोन, यानी कुरान वालों के टेबल पे एक नॉन कुरान वाली बैठ गई। अल्लाह की पनाह मुझे उस पे रहम आए, और ये उसको क्या बता रहे हैं, बड़ा मजा आता है क्लास में तर्जुमा सुनते हैं, एक एक लफ्ज का तर्जुमा सुनते हैं, आधे पारे का टेस्ट होता है। अच्छा मेरा वहां हलक सूख रहा, बस भी करें ये इतने माशाल्लाह मुफ्तियान बैठे हैं, यकीन करें मैं उस वक्त उन 5-6 थी जो उस टेबल पे, उनको नहीं सोच रही थी मैं, वो उन 1 या 2 को देख रही थी जो बेचारी किस्मत मारी आके इनके टेबल पे बैठ गई। मैं सोचूं अगर मैं इनकी जगह होती जो इनके मदहुईन है, तो मेरी सारी शादी खराब हो गई। डोंट डू दिस, लिखिए मधु को शर्मिंदा ना करें, कभी भी अपने मद्दे मुकाबिल को नंबर एक शर्मिंदा ना करें, गुस्सा ना दिलाएं, जिद में ना लाएं, खरी खरी ना सुनाएं, मुंह दर मुंह ना उसके आए, फिकी बैसों में ना पड़े, ताने ना दें, और उसको एम्बेरेस्ड ना करें। यहाँ एक छोटा सा असूल है, बहुत खूबसूरत असूल है, विन विन, तुम भी जीतो हम भी जीते, ये करिए, दाई को ये टैक्टिस आनी चाहिए, तुम भी जीते हम भी जीते, जैसे हजरत यूसुफ ने किया, भाइयों को शर्मिंदा नहीं किया, स्टेज पे चढ़ के तख्त पे चढ़ के ये नहीं कहा हा 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 देखो तुमने तो कुएं में फेंका था, अल्लाह ने मुझे तख्त पे चढ़ा दिया, देखा मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और हमारा एक और भी बड़ा अपने बारे में ख्याल होता है, कोई हमसे टक्कर खाएगा मुंह की खाएगा देखना। मिसाल है आपकी किसी दोस्त ने आपके साथ जरा सी मुंह मारी कर ली, उसके बाद उसका बच्चा बीमार हो गया, आप कहते देखा मैं अल्लाह वाली से टक्कर ली, बच्चा बीमार हो गया, इसको पता ही नहीं मेरी ताकत कितनी है, मैं इतनी नेक पाक, मेरा दिल तोड़ा, देखो इसके मियाँ ने इसका दिल तोड़ दिया। कभी ना करिए, याद रखिए नबी सल्लम ने कभी अपनी जात के साथ किसी को नहीं जोड़ा, ना बदला लिया, दीन के दुश्मनों से जंगें भी हुई और अपनी जात के दुश्मन जादू कर दिया लबीद बिन आसिम ने, आपको पता भी लग गया, एक औरत ने आपको जहर तक खिला दिया, लेकिन आपने कहा जाओ तुम, मैं अल्लाह ने माफ किया। निकल रहे हैं बाहर, कचरा रोज फेंक रहा है, कूड़ा फेंक रहा है, उधर से गुजरते हुए निकलते हैं, एक दिन निकले कूड़ा नहीं फेंका, कहा खैरियत है, कहा लगने भी वो बीमार है, अच्छा ऊपर गए जाके उसकी सफाई कर दी, उसकी खिदमत की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। किरदार किरदार किरदार, अंदर की नरमी बाहर की गर्मी। और एक शेर मुझे हमेशा दाई के ऊपर तो बहुत फिट लगता है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफर, योर विजन विल बी बिग, यानी ऊंचा देखता है हमेशा, याद रखिए लुक अप, ओके हाई एक्सपेक्टेशंस, बिग होराइजन, बड़ी चीज़ों को देखे, ठीक है, छोटी छोटी बातें ना देखे, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं करूँगी। सुखन बात करना, सॉफ्ट स्पोकन, सुखन दिल नवाज, सॉफ्ट स्पोकन, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोस, जां दिल हार्ट, पुरसोस सॉफ्ट हार्ट। दाई दीन की विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, आवाज़ बड़ी नरम, सॉफ्ट स्पोकन, और दिल में तड़प हो, यही है रखते सफ़र, यानी दिस इज़ द ओनली रखते सफ़र, जो प्रोविजन हम सफ़र पे लेके जाते हैं, खाना पानी, जो मतलब पिकनिक पे जाएं तो वो बड़ी बड़ी टोकरियां उठा उठा के जाते हैं खाने की, बर्तनों की, यही है रखते सफ़र। मीरे कारवां, मीरे कारवां कौन होता है? लीडर, योर मेंटोर, योर लीडर, जो आपको लेकर चलता है। इस्लाम ने उसको कहा अमीर, आप उसको लीडर कह लें, कोई एक बंदा जिसकी बात आपने माननी है। तो ये तीन चीज़ें आपने अपने अंदर लानी है, आज आज से अपने ऊपर पड़ जाएं, मत देखें किसी को, यकीन करें आपको अब अफसोस होगा जिन जिनको आप अभी तक दावत दे चुके और वो कबूल ना कर चुके, फिर भी दिल अल्लाह ही उनके खोलेगा, बट हम अपनी सी तो तैयारी करें ना। आपने आज के बाद बड़ी बात सोचनी है, और बड़ी बात क्या, मैं सबसे बड़ी बात कह देती हूँ, जब एक चेंज नबी सल्लम के जरिए आया, नबी से आया ना, अल्लाह वो सारा मैंने लेके आना है इंशाल्लाह, इट्स पॉसिबल, क्योंकि अल्लाह के नबी हमारे लिए रोल मॉडल है। आप देखें ना, कुरान सबसे पहले नबी के ऊपर उतरता था, नबी सहाबा को सुनाते थे, राइट, सहाबा कराम ने नबी सल्लम के जरिए से कुरान सुना, अल्लाह के नबी एक प्रैक्टिकल रोल मॉडल थे सहाबा के सामने, ये किसी को नहीं मिली आज तक, ना मुझे आपको मिलेगी, ये तो रुतबा आला था, जिसको मिला सो मिल गया, लेकिन आपने, मैंने उन्हीं की बताई हुई चीज़ों से ये सीख कर अपने आप को आगे लेकर आना है, और ये कुरान, ये आयतें, ये हिकमत, ये सारा कुछ आपको, मुझे ये बात सिखा देगा। और एक जुमला लिखिए, बहुत डरेंगे आप इसके बाद तबलीग करते हुए, टू मच स्केरी थिंग, एक नादान और गैर तरबियत शुदा, या नादान मीन इनोसेंट कह लीजिए, गैर तरबियत याफ्ता अनट्रेंड मुबल्लिग अपनी दावत के लिए इस दावत के दुश्मनों से भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। यकीन करें मत कीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती, मैं खुद ये काम कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँगी मत कीजिए जब तक करना ना आ जाए, मत बोलिए जब तक बोलना ना आ जाए, मत किसी को टच कीजिए जब तक संभाल नहीं सकते, एक दलील दे के आगे से चुप, अब अगला चढ़ाई कर रहा है, फिर आप कहते हैं टीचर से पूछ के बताएंगे, ना छेड़े ऐसे इशू, बड़े बड़े बातें मत कीजिए। कोई हम पे इतराज़ नहीं करता कि क्या खिलाया, अच्छा था, नमक थी, मिर्च थी, तब तक जब तक हम उसको बुलाते नहीं हैं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये काम इतना सेंसिटिव है, मैं करीब से जानती हूँ किसी को, वो पायलट बनने के शौक में चले गए, उसको किस किस मुश्किल में डाल दिया उन्होंने, सर से पांव तक रखा कि पायलट बनना है, बाकी बड़ा सेंसिटिव काम है, डॉक्टर बनना, कभी आज तक इंग्लैंड में रहते हुए आपने, चले लंदन और इसके इर्द गिर्द के हॉस्पिटल में, कभी किसी ऐसे बंदे को ऑपरेशन करते देखा है जिसने ए टू जी ऑपरेशन करने तक के स्टेप्स सिर्फ सीखे नहीं, उसका हॉर्स जॉबर, उसकी ए टू सी, बी टी सी सब कुछ ना किया, कभी मुमकिन है? कोई बैठ सकता है? जुर्म नहीं है, बिग जुर्म है। आपने किसी भी कोर्ट में किसी ऐसे शख्स को लायर का ड्रेस पहनकर जाकर मुकदमे लड़ते देखा है जिसने पूरी ना की हो? ये तो कोई हो ही नहीं सकता कि सीखा ना हो, पूरा ना किया हो। आज हम पूरा ना करके मुबल्लिग बने बैठे हैं, मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ इसको, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है, इट्स मोस्ट सेंसिटिव। डॉक्टर गलती करेगा जान जाएगी, वकील से गलती होगी ना तो उसकी जमीन उसके नाम चली जाएगी जिसकी नहीं थी, ये भी बुरा है। मुबल्लिग गलती करेगा, एक बंदा हमेशा के लिए दीन से दूर हो जाएगा। मैं इन मौलवियों से बेजार, मैं इनसे अच्छा, और इसमें मैं उन लोग सबको कहूंगी जो जज्बाती तकरीरें करते हैं, जो खरी खरियां सुनाते हैं, जो सीने पे हाथ मार मार के और न जाने क्या कुछ, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्टली नीडिड थिंग। फिर आप कहते हम करते ही नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम नहीं डॉक्टर बनते बहुत से, राइट, हम किसी और से इलाज करा लेंगे, एज अ वुमेन हाउस होल्ड, बीवी, माँ, बहन, बेटी, ये तो एक ऐसी चीजें हैं कि इससे तो मफर है ही नहीं, और ऊपर उस पर ये कि हमने कुरान पढ़ लिया। आप कहते हैं चुप के घर बैठो, कुरान पढ़ा चुप कर दो, खत्म। जुर्म है, आपने एक सीट जाया की, आपने ये सीट जाया नहीं कर। दिस इज द ओनली वे अब आपके मेरे पास टू बी रेडी टू गेट ट्रेनिंग्स। इस पे आगे चलेगी बात बहुत। देखिए, याद रखिए कि आप मैं हाईवे पे गाड़ी डाल चुके हैं, अब ना निकल सकते हैं ना गाड़ी रोक सकते हैं। कह ले कि फ्लाइट चल पड़ी है, अब ना खिड़कियां खुलेंगी ना फ्लाइट उतरेगी। आपको सब्र से बैठ के अपना मजीद सफर तय करना है। सब्र शुक्र के मराहिल के साथ जमे रहिए। क्राइटेरियन वही है, फइन आमिनो मिसलमा आमन तुम भी, अगर ये ईमान लाए ऐसा जैसा तुम लाए फकत इख्तदो। हिदायत का मेयार यही है, और इंशाल्लाह हम सब ने अपने आप को बेहतर करना है, और हर वक्त कीजिए। और ये एक ऐसा काम है कि जिसको इस्लाम की नशरो इशात में उभर लेकर आना है ना, आप देखिए कि ये काम ऐसा है कि जिसको ना पैसे के लालच से कोई करा सकता है, और ना पैसा छीनने के खौफ से छुड़ा सकता है, ना जबर है ना इकरा है, बल्कि ईमान ही वो है कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये काम हो। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें महरूम ना करे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व तूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम, व तूब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।